दिन भर 29 मई दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। केरल पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ सरेआम बैलवध करने का मामला दर्ज किया। कई राज्यों में क्रूरता अधिनियम में परिवर्तन करने का विरोध।
ये कहां तक की बेवकूफी है? मैं पुलिस वाले को पैसे दूंगा, मैं गोरक्षक को पैसे दूंगा, मैं गाड़ी वाले को पैसे दूंगा, आते जाते पुलिस, ये क्या हो रहा है? ये वोट डिक्टेट करने वाले कोई नहीं होते हमको। सेंट्रल गवर्नमेंट इज नो वन टू डिक्टेट अवर लाइफस्टाइल्स टू अस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिनों की विदेश यात्रा के पहले चरण में जर्मनी पहुंचे।
जो एफटीए की वार्ताएं हैं जो 2013 से कुछ कोल्ड स्टोरेज में हैं, उनको शायद रिवाइव करने की और कुछ शायद संकेत हमें मिल पाए।
सुनिएगा अपने पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। कांग्रेस ने केरल में बछड़े की जान लेने से जुड़े बताए गए युवक कांग्रेस के नेताओं की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी है। ये जानकारी कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दी है। इस मामले में केरल पुलिस ने आपराधिक मामला भी दर्ज किया है। इन नेताओं ने कथित तौर पर केंद्र सरकार के उस आदेश के विरोध में वी फेस्टिवल का आयोजन किया था, जिसमें बूचड़खानों के लिए मवेशियों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस आदेश का देश के दूसरे हिस्सों में भी विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे राज्य सरकारों की शक्तियों के अतिक्रमण की कोशिश बताया है और कहा है कि इसे कानूनी तौर पर चुनौती दी जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पेरिस के करीब मुलाकात कर रहे हैं। पुतिन के प्रवक्ता के मुताबिक इस मुलाकात का मकसद द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर करना है। हालांकि बीबीसी के पेरिस संवाददाता के मुताबिक पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में मैक्रों की विरोधी मरी लापेन का समर्थन किया था। ऐसे में इस मुलाकात के दौरान असहज स्थितियां सामने आ सकती हैं। मोरक्को प्रशासन ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले नासिर जेव जाफी को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी का आदेश शुक्रवार को जारी किया गया था। वो उसके बाद से ही फरार थे। उन पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का अभियोग चलाया जा सकता है। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत बीते साल अल होशिमा से हुई थी, लेकिन अब ये राजधानी रबात सहित दूसरे हिस्सों में फैल गया है। नासिर के गृहनगर अल होशिमा में एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम गिरफ्तार हुए अपने भाइयों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से कुछ को रबात भेज दिया गया है और कुछ यहाँ है। उन्होंने मासूम लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका अभियान से कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ फौज से घिरे हैं जो लोगों के घर जाकर उन्हें बाहर आने के लिए मजबूर करती है। ये थे एक प्रदर्शनकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस साल नवा मिसाइल परीक्षण करके उत्तर कोरिया ने अपने प्रमुख सहयोगी चीन के प्रति असम्मान दिखाया है। ट्रंप ने यह टिप्पणी ट्विटर पर की है। उनकी प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि चीन ने उत्तर कोरिया से बातचीत की मेज पर वापस आने की स्थिति बहाल करने को कहा है। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए कम दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया है। चीन ने परीक्षण की निंदा की है, लेकिन किसी अन्य कार्रवाई का ऐलान नहीं किया है। श्रीलंका के अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घर छोड़कर जाने वाले लोगों से कहा है कि पानी का स्तर कम होने की स्थिति में भी वो वापस न लौटें। अधिकारियों का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान होने वाली बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। शुक्रवार से हो रही मानसूनी बारिश की वजह से श्रीलंका में करीब 180 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 100 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित मात्रा की महिलाओं ने नुकसान की जानकारी देते हुए कहा, मैंने, मेरे बच्चों ने और मेरे बच्चों के बच्चों ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। हमारे पास एक पिन तक नहीं बची है। सब कुछ तबाह हो गया है। एक अन्य महिला का कहना था कि हमारा गुजारा एक छोटी सी दुकान से होने वाली कमाई से चलता था। जमीन धंसी तो दुकान और उसमें रखी सभी चीज़ें तबाह हो गईं। मेरे पति स्ट्रोक का शिकार हुए हैं। मैं मदद के लिए अनुरोध कर रही हूँ। ये थी बाढ़ पीड़ित एक महिला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी के आंतरिक मंत्री थॉमस डे मेजिये ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ सुरक्षा साझेदारी को अहम बताया है। इसके पहले जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने सहयोगियों पर निर्भरता को लेकर सवाल उठाए थे। मर्केल ने कहा था कि यूरोप पूरी तरह दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। हालांकि आंतरिक मंत्री ने कहा है यह साझेदारी अहम है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। केरल पुलिस ने कन्नूर जिले के युवा कांग्रेस के नेता रिजिल मक्कूटी सहित कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ सरेआम बैल का वध करने के सिलसिले में आपराधिक मामला दर्ज किया है। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने भी इस सिलसिले में अपने 5 कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया है। केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पशुओं के खिलाफ क्रूरता अधिनियम में संशोधन किए जाने के खिलाफ केरल सहित दक्षिण भारत के कई प्रांतों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं पर लोग विरोध स्वरूप बीफ फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं तो कहीं सड़कों पर प्रदर्शन। इन सब के बीच केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि वो संशोधित कानून को अपने प्रांतों में लागू नहीं करेंगे। Salman Ravi ki report.
ये हैं केरल प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष डीन कुरियाकोस। डीन कुरियाकोस कह रहे थे कि केंद्र सरकार के नए कानून का विरोध होना चाहिए, मगर जिस तरह से कन्नूर जिले में एक बैल का सरेआम बीच सड़क पर वध किया गया, उससे पार्टी का आलाकमान नाराज है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार अपने राज्य में केंद्र सरकार के संशोधित अध्यादेश को लागू नहीं करेगी, मगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एच राजा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा,
यह बीफ को लेकर पार्टी का काम बढ़ाना करके कोई कंपल्शन बीजेपी के लिए नहीं है। आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट से, आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी से निपटाने की उनमें दम नहीं है, तो इसीलिए वो वायलेंस करता है। कानून केंद्र सरकार ने ले आता है तो उसको लागू कराने की दम सरकार पे है, तो जो इसका खिलाफ होगा देखा जाए।
एच राजा का कहना था कि 60 के दशक में क्यूबा जैसे देश में वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने भी इसी तरह का कानून लागू किया था।
क्यूबा में फिदेल कास्त्रो ने काउ स्लॉटर को बैन किया, वहाँ शुगर के उत्पादन ज्यादा था लेकिन इंटरनेशनली शुगर ग्लट में चले गया, इसलिए वो पशुपालन और डेयरी फार्म को डेवलप करने के लिए ऐसे कानून ले आया। अगर हिंदुस्तान में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ले आना, काउ स्लॉटर को बैन करना जरूरी पड़ता है।
हालांकि सरकार के नए प्रस्ताव से दक्षिण भारत में किसान खुश नहीं है, खास तौर पर ऐसे लोग जो कई सालों से पशुपालन का काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं तमिलनाडु के सेलम जिले के रहने वाले पीयूष मानुष।
ये कहां तक की बेवकूफी है, मैं पुलिस वाले को पैसे दूंगा, मैं गोरक्षक को पैसे दूंगा, मैं गाड़ी वाले को पैसे दूंगा, आते जाते पुलिस, ये क्या हो रहा है? ये वो डिक्टेट करने वाले कोई नहीं होते हमको, सेंट्रल गवर्नमेंट इज नो वन टू डिक्टेट अवर लाइफ स्टाइल टू अस। आप कुछ अच्छा कर पाए, सरकार कुछ अच्छा कर पाए तो करे, हम तो जो भी इन्होंने रूल किया है सब रूल को वायलेट करेंगे।
रविवार को चेन्नई की आईआईटी में भी कुछ छात्रों ने अध्यादेश में संशोधन का विरोध करने के लिए बीफ फेस्टिवल का आयोजन किया था। इस फेस्टिवल के आयोजकों में से एक हैं अजहर, जिनका कहना था,
वी हैड अराउंड 70 टू 80 स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल एफिलिएशंस जॉइनिंग टुगेदर टू कंडक्ट अ बीफ फेस्ट। वी एट बीफ बट आल्सो वी
हैड। अजहर कह रहे थे कि सरकार नहीं तय करेगी कि कौन क्या खाएगा, क्योंकि ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय के सतीश भी इन्हीं में से एक हैं। सतीश का आरोप है कि बीफ के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत की राजनीति में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है।
अब इस बार जब बीजेपी आई है तो उसका बीफ के साथ ही उसका अलग सा एक नाता जुड़ा है, जहाँ पे भी लोगों में गई है, लोगों को बांट के बीफ के साथ ही कर रही है। अब यहाँ पे खास करके जो साउथ की बात जब आती है, बीजेपी यहाँ पे नहीं आ सकी इतने दिनों तक, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांग थोड़ा एंटीकास्ट आइडियोलॉजी बोली या एंटीकास्ट मूवमेंट बहुत चलता रहा है। और तो इस अभी जो मौका मिला है, जो 2-3 दिन पहले ये इसका एक वो अल्लाह निकल के लाए हैं कि मार्केट में नहीं बेचना है ऐसा करके, तो उसके साथ उसका पहुंच पर्टिकुलरली बढ़ाना चाहती है साउथ में, लेकिन इसका रास्ता इतना सीधा नहीं है।
तमाम आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी एच राजा कहते हैं कि ये कहना गलत है कि बीफ पर प्रतिबंध की बात को लेकर ही उनकी पार्टी दक्षिण भारत में ध्रुवीकरण करना चाहती है। वो कहते हैं कि दक्षिण भारत के मतदाता क्षेत्रीय दलों से ऊब चुके हैं, इसलिए उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। वो ये भी कहते हैं कि केरल में हुए विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत इस बात की पुष्टि करता है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिनों के विदेशी दौरे के पहले दिन आज जर्मनी पहुंचे हैं। जर्मनी के बाद नरेंद्र मोदी स्पेन, रूस और फ्रांस भी जाएंगे और रवानगी के पहले वो इस बात को कह चुके हैं कि इन दौरों का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के आर्थिक सहयोग और विदेश नीति को बढ़ावा देना है। नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
जर्मनी में नरेंद्र मोदी की मुलाकात चांसलर एंगेला मर्केल और राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर से भी होगी। मोदी इशारा कर चुके हैं कि मर्केल के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म, विज्ञान तकनीक, कौशल विकास और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रेल, हेल्थ और दवाओं के विकल्प पर भी साझेदारी को लेकर आगे का प्लान बन सकता है। मंगलवार शाम तक मोदी जर्मनी से स्पेन के लिए रवाना हो जाएंगे और इस दौरे की खास बात यह है कि 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला स्पेन दौरा होगा। बहरहाल 2016 में जर्मनी के साथ भारत का व्यापार $17 अरब से ज्यादा था, तो पहले जर्मनी और फिर स्पेन, क्या हासिल हो सकता है पीएम की पहली चरण की यात्रा से? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर के जैन।
ये उम्मीद की जाती है कि शायद जो आर्थिक संबंध जर्मनी और भारत के बीच में है, चूंकि जर्मनी यूरोपीय संघ, हमारे जो व्यापार संबंध जर्मनी के साथ हैं, यूरोपीय संघ में सबसे ज्यादा इसी देश के साथ हैं, तो काफी बढ़ावा उम्मीद है कि इस दौरे के होने से आर्थिक क्षेत्र में पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ डिफेंस और न्यूक्लियर क्षेत्र में भी कुछ हद तक प्रगति हमें देखने को मिले। दौरे के दौरान ये भी हो सकता है कि जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो FTA की वार्ताएं हैं, जो 2013 से कुछ कोल्ड स्टोरेज में हैं, उनको शायद रिवाइव करने की और कुछ शायद संकेत हमें मिल पाए। और स्पेन हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, हाई स्पीड रेल हो, आपके सुनने वालों को ये जानकारी जरूर होगी कि 2 साल पहले स्पेनिश कंपनी इनेको जो है वो दिल्ली कलकत्ता का हाई स्पीड रेल की फिजिबिलिटी स्टडी कर रहा है।
स्पेन के बाद नरेंद्र मोदी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचेंगे, जहां 31 मई से 2 जून तक इंडिया रूस सालाना समिट में उनको हिस्सा लेना है। खुद मोदी इस बात का इशारा कर चुके हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पिछले वर्ष हुई अपनी बातचीत को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रूस की यात्रा का एक प्रमुख अवसर वो भी रहेगा जब मोदी और पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करेंगे, जहां भारत के पास मेहमान देश का दर्जा है। दौरे के अंतिम हिस्से में मोदी फ्रांस जाएंगे, जहां वो फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से आधिकारिक तौर पर अपनी पहली मुलाकात करेंगे। प्रोफेसर आर के जैन के मुताबिक सामरिक तौर पर ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।
रशिया के संबंध कुछ खटाई में थे, तो उसको रिजुविनेट करने की कोशिश की जाएगी। व्यापार कुछ हमारा गिर रहा है और हो सकता है कि जो कुंडलम में जो 2 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के जो अग्रीमेंट्स हैं उस पे भी कुछ ठोस निर्णय लेके कुछ समझौते हो सकते हैं और आखिर में नई फ्रांसीसी सरकार के साथ जो है जो हमारे घनिष्ठ संबंध हैं और विशेष रूप से जो डिफेंस के क्षेत्र में हो सकता है राफेल के संबंध में जहां कुछ अटकलें इस प्रकार की लगाई जा रही थी कि कुछ एक सेकेंड ऑर्डर राफेल जेट्स के लिए, इस संबंध में भी मेरे ख्याल से कुछ चर्चा जो है फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ हो सकती है।
हालांकि कई विश्लेषक इस बात को भी दोहराते रहे हैं कि शुरुआत में नरेंद्र मोदी सरकार ने विदेश नीति पर अत्यधिक ध्यान दिया था और बीच में उन्हें पिछड़ जाने का भी एहसास हुआ लगता है। प्रोफेसर जैन इस बात को विस्तार से समझाते हैं।
मेरे ख्याल से पिछड़ने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस जो है वो डोमेस्टिक चुनावों पे काफी रहा है। कई महत्वपूर्ण राज्यों में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जिस गति से प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे थे, मेरे ख्याल से शायद ये मौका रहा था। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा था कि जिस अग्रेसिव मोड में प्रधानमंत्री पहले जो है भारत में निवेश अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो वो अक्सर ये कहा जा रहा था कि वी सी द सिजल बट वेयर इज द मीट, यानी कि ठोस रूप से भारत में निवेश नहीं आ पा रहा था।
6 दिन के अपने यूरोप के दौरे में आर्थिक और सामरिक मामलों के अलावा भारत को जिस चीज की चाहत शायद मन ही मन में रहेगी वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सीट की दावेदारी भी हो सकती है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। اتر پردیش کے رامپور ضلع میں دو لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے اور ویڈیو بنانے کے آروپ میں پولیس نے چار مکھیہ ابھیوکتوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں کل 14 لوگوں کو ابھیوکت بنایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ایک ویڈیو میں کچھ لڑکے دو لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانی اور بدسلوکی کر رہے تھے۔ سماجوادی پارٹی نے اس گھٹنا کے ورودھ میں آج لکھنؤ میں پردرشن بھی کیا۔ سنیے لکھنؤ سے سمیر آتمت مشر کی رپورٹ۔
رامپور کے ٹانڈا علاقے میں جا رہی دو لڑکیوں پر کچھ لڑکوں نے پہلے آپتی جنک ٹپڑیاں کی اور پھر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور مار پیٹ بھی کی۔ انہی لڑکوں میں سے ایک نے اس گھٹنا کا ویڈیو بھی بنایا اور پھر یہی ویڈیو ان لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور ابھیوکتوں کی تلاش شروع کی۔ کل 14 لوگوں کے خلاف شکایت درج کی گئی، جن میں 4 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رامپور کے ایس پی وپن ٹانڈا نے بتایا،
اس معاملے میں ابھی ہم نے 4 ابھیوکت گرفتار کر لیے ہیں کل، جس میں سے کہ 2 ابھیوکت وہ ہیں جنہوں نے بچوں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور ایک ابھیوکت وہ ہے جس نے کہ ویڈیو بنایا تھا۔ اس کے علاوہ ہماری دبیشیں اور چل رہی ہے اور آج اور گرفتاری ہونے کی ہمیں امید۔
یہ گھٹنا دن کے وقت ہوئی اور اس سمے سڑک پر تمام لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ لڑکیوں نے لوگوں سے بچانے کی گہار بھی لگائی، لیکن ویڈیو میں دکھ رہے سبھی لوگ انہیں پریشان ہی کر رہے ہیں، بچانے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اس گھٹنا کے بعد اور راجیہ بھر میں قانون ویوستھا کی کتھت خراب استھتی کو لے کر سماجوادی پارٹی نے آج کئی جگہ پردرشن بھی کیا۔ سماجوادی پارٹی کے نیتا اعظم خان تو یہاں تک کہہ گئے کہ مہیلاؤں اور لڑکیوں کو گھروں سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے۔
موجودہ سرکار میں جتنے بلاتکار ہوئے، ہتیائیں ہوئی ہیں، لوٹ ہوئی ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ بلند شہر کے حادثے کے بعد ہر شخص کو کم سے کم اپنی گھر کی عورت کو کوشش کرنا چاہیے وہ گھر میں رہے۔ لڑکیوں کو بھی ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں بے شرمی کا ننگا ناچ ہو۔ یوگی جی کو دھنیہ واد کہنا چاہیں گے اور میڈیا کو بھی مبارکباد دینا چاہیں گے، ان کی اندیکھی سے اپرادھ کی حد تک بڑھ رہا ہے۔
وہیں راجیہ کے اپ مکھیہ منتری کیشو موریہ نے ایک بار پھر دہرایا کہ سرکار اپرادھیوں کے ساتھ سختی سے نپٹے گی۔
میں نے بھی دیکھا ہے اس ویڈیو کو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے جو اپرادھی ہیں ان کے خلاف اتنی کٹھور کارروائی کی جانی چاہیے، اور سرکار نے اس پر بہت سختی کے ساتھ نپٹنے کا بھی نرڑے لیا ہے کہ دوبارہ کوئی اس پرکار کا ساہس نہ کرے، اور اب ان کے ساتھ پولیس بھی بے رحمی کے ساتھ نپٹنے کا کام کرے گی۔
اس بیچ راجنیتک دلوں کے علاوہ کئی مہیلا سنگٹھنوں نے بھی اس گھٹنا کی نندا کی ہے اور راجیہ سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ وہیں اس گھٹنا میں پولیس نے 14 لوگوں کو ابھیوکت بنایا ہے، جن میں سے ابھی تک صرف 4 لوگ ہی گرفتار ہو سکے ہیں، 10 لوگ ابھی بھی پولیس کی گرفت سے باہر ہیں۔ سمیر آتمج مشر، بی بی سی لکھنؤ۔
اتری دلی کے گرو تیگ بہادر میٹرو اسٹیشن کے سامنے نیو کشور مارکیٹ بستی میں ماتم ہے۔ وہاں رہنے والے الیکٹرک رکشا ڈرائیور رویندر کمار کو شنیوار رات کتھت طور پر اس لیے مار دیا گیا کیونکہ انہوں نے دو لڑکوں کو سڑک پر پیشاب کرنے سے منع کیا تھا۔ کیندریہ منتری وینکیا نائیڈو نے اس گھٹنا کی کڑی نندا کی ہے اور پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ بی بی سی سنواد داتا ونیت کھرے آج رویندر کمار کے گھر پہنچے۔
ہم اس وقت ہیں دلی کے گرو تیگ بہادر نگر میٹرو اسٹیشن کے پاس، جس علاقے میں رویندر کمار رہتے تھے، جن کے ساتھ یہ پورا حادثہ ہوا۔ یہاں پر پولیس کے کافی سارے لوگ ہیں اور ان کا شو یہاں لایا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس گھٹنا کو دیکھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟
میرا پرمود کمار سنگھ۔ سر جی، جب شنیوار کو 1:30-1:25 کا ٹائم تھا، تو وہاں پر میں، رویندر کمار، میں اور عارف تین بندے وہاں پر تھے۔ وہاں پر تو وہاں پر وہ دو لڑکے گاڑی میں بیٹھ کر کے سب سے پہلے بیئر پی رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک لڑکا نا وہاں باتھ روم کرنے لگ گیا، ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ ان کو منع کیا، بھیا یہاں پہ باتھ روم مت کرو، ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہ گالی گلوز اسٹارٹ کر دی ہمارے ساتھ میں۔ دو چار بندے اور آ گئے ہم لوگ رکشے چلانے والے، تو اس کے بعد میں کمپرومائز ہو گیا اور وہ اپنے چلے گئے ادھر اور میں چلے گیا اپنا، سب شانتی ہو گئے۔ دھمکی یہ دے کے گئے ہیں کہ ابھی کیا نام وہ پیپر ہے میرا، جا رہا ہوں اور شام کو آؤں گا، تیرے کان نہ ناک پہ لگاؤں گا اور شام کو بتاؤں گا۔
منوج، آپ کیا کام کرتے ہیں؟
میں بھی رکشہ چلاتا ہوں۔ سواری بڑھتے بڑھتے سر وہ پیچھے سے کچھ لوگ آئے، حملہ کر دیے۔ آتے نا وہ مارنے لگ گئے میرے دوست کو، مارتے مارتے میرے وہاں مارا، اس کو مارا، میں تو کیسے تھے چھڑا کے بھگا میں اپنے فیملی کو بلانے کے۔
کتنے لڑکے تھے؟ قریب
سر 20-25 تھے بندے۔ مارتے مارتے ان کو تو بحال کر دیا، میں تو جیسے تیسے کر کے چھڑا کے بھگ گیا۔
کیسے مار رہے تھے
سر؟ وہ انگوچھا میں باندھ رکھے تھے اینٹیں۔
اچھا،
اینٹ باندھ کے اس کو ایسا مارا، اینٹوں سے جمع کے اینٹوں سے مارا، سینے پہ وار کا، سب جگہ مارا اس کو۔ بھاگ کے جیسے آیا बुला के ले गया फैमिली को अपने, तो यहाँ से वो सारे भाग चुके थे, सारे
लड़ाई हो गई थी, चला गए थे, फिर दोबारा आए थे, आकर फिर बोलते जा रहे थे मैं बुराड़ी रहने वाला हूँ, एक बोल रहा संत नगर रहने वाला हूँ,
एक ने कहा बुराड़ी में रहने वाले, एक संत नगर में।
सर यहाँ पे सब मिडिल फैमिली के लोग, गरीब लोग हैं, यहाँ पर रोज ताजा खाना कमाने वाले झुग्गी वाले, सब्जी बस्ती वाले जो सब्जी बेचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ अपना घर का गुजारा करते हैं।
हम तो यही कह रहे हैं कि पब्लिक के हवाले उस लड़के को आप कर दीजिए, आप लोग के बस के नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गुंडे मार पीट करके ऐसे घूमते रहते हैं, उनको केस चलता रहता, थाने के पीछे चलते रहते हैं, क्या होता है, कुछ होता है?
कार्रवाई करिए, जिन लोगों लड़कों ने मारा उनको सख्त से कार्रवाई करी जाए और उनको अरेस्ट करिए।
माँ तो होपलेस में हो के घूम रही है, उनके आगे पीछे कोई करने वाला नहीं है, अभी पब्लिक आ रही है जा रही है, उनको कुछ नहीं पता लग रहा, जब सब हट जाएगा, अकेला पड़ेगा, बेटा सामने नहीं आएगा, तब उनको पता लगेगा।
यही पैदा हुआ और यही पे बड़ा हुआ और जी यहीं पे उसको खत्म कर दिया।
अच्छे नेचर का बच्चा
था, अच्छे नेचर का था, हर किसी से मिल के चलता था, बोल के चलता था।
ये थी विनीत खरे की रिपोर्ट। आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का, जवाब दे रहे हैं राजेश जोशी।
आपकी राय नमस्कार स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और आज मेरे साथ हैं
इंदु पांडे।
इंदु पांडे का भी नमस्कार स्वीकार कीजिए। इंदु जी, आपके पास चिट्ठियां भी हैं और ईमेल भी हैं, कहां कहां से आई हैं, दुनिया के किस किस कोने से हमारे पास चिट्ठियां आई हैं?
बड़े सारे कोने हैं, एक कोना तो मुझे दिख रहा है इसराइल का।
इसराइल से चिट्ठी आई है
जी, इन्होंने ये ईमेल लिखा है रिहो वोट इसराइल से। लिखने वाले हैं डॉक्टर दीपक अंबट, कहते हैं कि मैं ग्राम लोहड़ी थाना गोह जिला औरंगाबाद बिहार में आपके कार्यक्रम सुना करता था और अब इसराइल में सुनता हूं। ये फिजिक्स में पीएचडी करने के बाद वाइसमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसराइल में रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, और इनकी शिकायत है कि आजकल आप लोगों की भाषा बदल गई है, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल अक्सर ही आप लोग और आपके संवाददाता करने लगे हैं, और जब मैं ऐसा सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं एफएम रेडियो सुन रहा हूं।
दीपक अंबट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि पहले तो आपने चिट्ठी लिखी, अपने गांव लोहड़ी से और इसराइल तक पहुंच गए आप, लेकिन हमें ना भूले, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात आपने लिखी है कि हम अपनी जबान में, भाषा में इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं, तो आप लोहड़ी गांव से इसराइल पहुंच गए हैं तो वैसे ही हिंदी भाषा पिछले 40, 50, 60 सालों में थोड़ी थोड़ी बदली है, इसमें बहुत सारे उर्दू के शब्द भी आए हैं, इसमें अंग्रेज़ी के शब्द भी आने लगे हैं, और अब तो ये है कि कभी बहुत अटपटा लगने लगता है, हम भी जब आपस में बात करते हैं तो अंग्रेज़ी के बहुत सारे शब्द आते हैं। मैं आपकी ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ अंग्रेज़ी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरी होता है बात को समझाने के लिए वहाँ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप इसराइल में रहते हुए हमें चिट्ठी लिख रहे हैं, हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और हमें चिट्ठियाँ ज़रूर लिखा कीजिए।
और ऐसी ही कुछ बात कही है अशोक कुमार ठाकुर ने मालीटोला अदलपुर दरभंगा बिहार से, बिल्कुल यही बात, उनका भी यही कहना है
कि अंग्रेजी में हम ज्यादा बोल रहे हैं
जी
अच्छा, तो अशोक कुमार ठाकुर से भी मेरा यही कहना है कि कई बार लाइव ट्रांसमिशन में, जैसे मैंने लाइव ट्रांसमिशन कहा, ये अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन आपको समझ में आ गई होगी कि बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं। वही बात है कि गैर जरूरी अगर हो तो इस्तेमाल ना किया जाए और जरूरी हो तो इस्तेमाल होना चाहिए।
और दूसरे हमारे श्रोता हैं, लिखते हैं कि आपका एक दैनिक सुनने वाला किंतु आपको कम लिखने वाला श्रोता चंदन कुमार बोधगया बिहार से।
अरे दैनिक सुनने वाला लेकिन बहुत कम लिखने वाला, लेकिन लिखते क्या हैं ये?
लिखते हैं कि आपके सभी कार्यक्रम नियमित पिछले 10 सालों से सुन रहा हूं, मुझे बीबीसी सुनने की आदत मेरे पिताजी से मिली है जो अक्सर ही रेडियो पर आपका कार्यक्रम सुनने के लिए प्रेरित करते थे।
जी हाँ।
फिर आगे लिखा है कि आजकल इंडिया बोल कार्यक्रम स्टूडियो बोल कार्यक्रम में बदल गया है।
ये मैं समझ गया इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि पिछले बार हमारा जो शनिवार को कार्यक्रम हुआ था उसमें हम बहुत कम श्रोताओं को ले पाए थे, जिसका दुख हमें भी है, लेकिन ये बात इन्होंने सही कही कि अगर इंडिया बोल कार्यक्रम है, श्रोताओं का कार्यक्रम है, तो ज्यादा से ज्यादा श्रोता उसमें आने चाहिए।
हाँ, कहते हैं कम से कम 15 मिनट कॉलर से बात करें आप।
जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ये बात नोट कर ली गई है और इस पर जरूर हम ध्यान देंगे।
और ये हैं राकेश भाटिया मुंबई से, लिखते हैं कि 45 वर्षों से मैं आपको सुन रहा हूँ मौन श्रोता। ये भी हमारे मौन श्रोता
45 वर्षों से मौन साधे हुए हैं। देखिए अब तो हमें आपसे शिकायत है क्योंकि 45 वर्षों से आपने हमें नहीं लिखा, ये आपने आप खुद पर तो की, हम पर भी ज्यादती की है। क्या लिखते हैं?
एक चाह स्थाई स्तंभ बीबीसी पेज पर वसुतुल्ला खान जी और ब्रजेश जी की डायरी सभी पिछले ऑडियो क्लिप के साथ
ये लगा दें। अच्छा, ये तो संभव है ऐसा, हालांकि सभी पिछले ऑडियो क्लिप्स जो भी उनके हैं उनको तो लगाना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन अगर आप फेसबुक में जाएं तो इस तरह की चीज़ें हम भविष्य में ज़रूर ला सकते हैं।
इलाहाबाद से अनिल शुक्ल ने विनीत खरे को मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर ईमानदारी से समीक्षा करने के लिए बधाई दी है। लिखते हैं कि कम समय में उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों चुनौतियों को बिना पूर्वाग्रह के प्रस्तुत किया। ये तारीफ
अनिल शुक्ला इलाहाबाद से हमारे श्रोता हैं और बीबीसी हिंदी के रेडियो कार्यक्रमों की जितनी तटस्थता से समीक्षा करते हैं वो काबिल तारीफ है। उनकी मैं बड़ी कदर करता हूँ और हम सभी लोग कि वो जब आलोचना करनी होती है तो हिचकते नहीं है झिझकते नहीं है, जब तारीफ करनी होती है तब भी न हिचकते हैं न झिझकते हैं। तो शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद।
और रेहान फजल की विवेचना को बहुत पसंद किया है नागेंद्र कुमार कुशवाहा पिपराही बाजार जिला शिवहर बिहार से।
नागेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो जानते ही हैं कि रेहान साहब का कोई जवाब नहीं है, उनकी विवेचना का कोई जवाब नहीं है। अगली चिट्ठी में अगर आप कुछ सुझाव देंगे कि किन विषयों पर हम विवेचना हमें करनी चाहिए तो आपके सुझावों पर भी हम ध्यान देंगे। तो मुझे लगता है कि अब चिट्ठियां यहीं पर रोकी जाएं क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। चलते चलते पता बता देता हूं, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003 और ईमेल का पता ये है अगर आप ईमेल लिखना चाहें hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है वैभव दीवान के साथ।
बीबीसी खेल समाचार के साथ मैं हूं वैभव दीवान। केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने आज भारत तथा पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच किसी भी सीरीज की संभावना को नकार दिया। भारतीय कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के शीर्ष अधिकारी दुबई में आज दोनों देशों के बीच क्रिकेट रिश्तों की बहाली की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए बैठने वाले थे। खेल मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं कर देता तब तक भारत सरकार द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं देगी। संवाददाताओं को दिए गए बयान में केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा,
पाकिस्तान के साथ जो भी मैचेस होंगे मैं समझता हूँ बीसीसीआई को पहले सरकार से बात करने के बाद ही किसी तरह का प्रस्ताव या प्रपोजल देनी चाहिए। मैंने पहले ही क्लियर किया था कि बायलैटरल जो हैं पाकिस्तान के साथ बहुत मुश्किल होंगे गेम्स, क्योंकि आतंकवाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये रहते हुए पाकिस्तान के साथ खेल के संबंध नहीं बनाए जा सकते।
इंग्लैंड में 1 जून से शुरू हो रहे चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान का सामना 4 जून को बर्मिंघम में होगा। खेल मंत्री ने यह भी कहा कि जहां तक विभिन्न टूर्नामेंटों की बात है हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए दोनों देश इन टूर्नामेंट में एक दूसरे के साथ खेलना जारी रखेंगे। इस बीच चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खेले जाने वाले अभ्यास मैचों में कल भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। टेनिस में चल रहे फ्रेंच ओपन में विश्व नंबर 2 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीत के साथ शुरुआत की। पहले दौर में उन्होंने स्पेन के मार्सेल ग्रेनोलर्स को सीधे सेटों में हराया। पिछले ही महीने जोकोविच ने अपने कोचिंग स्टाफ को बाहर निकाल पूर्व टेनिस चैंपियन एंड्रिया गासी को अपना कोच बनाया था। इस नियुक्ति से खुश जोकोविच ने कहा,
It feels like a new chapter.
ये एक नया चैप्टर है। 10 साल से जिस टीम के साथ था अब उनको छोड़ ये नया साथ नई शुरुआत है।
वहीं महिला वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी जर्मनी की एंजेलिक कर्बर फ्रेंच ओपन के पहले मुकाबले में हार कर बाहर हुई हैं। उन्हें रूसी खिलाड़ी एकत्रीना माकरोवा ने सीधे सेटों में 6-2, 6-2 से हराया। बीबीसी खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। बूचड़खानों के लिए पशुओं को बेचने पर रोक से जुड़े केंद्र सरकार के आदेश का देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे राज्य सरकारों की शक्तियों के अतिक्रमण की कोशिश बताया है और कहा है कि इसे कानूनी तौर पर चुनौती दी जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पेरिस के करीब मुलाकात कर रहे हैं। पुतिन के प्रवक्ता के मुताबिक इस मुलाकात का मकसद द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर करना है। मोरक्को प्रशासन ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले नासिर जेवजाफी को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस साल नवा मिसाइल परीक्षण करके उत्तर कोरिया ने अपने प्रमुख सहयोगी चीन के प्रति असम्मान दिखाया है। श्रीलंका के अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घर छोड़कर जाने वाले लोगों से कहा है कि पानी का स्तर कम होने की स्थिति में भी वो घर वापस न लौटें। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे तिलकराज भाटिया, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।